नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर जी। नमस्कार अनवर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद आपको, श्रोताओं को नमस्कार।
आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने आज 3 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पेरिस ओलंपिक कोटा विजेता सभी 6 पहलवानों को चयन ट्रायल से छूट देने का फैसला किया। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व रैंकिंग में फिर शीर्ष स्थान हासिल किया। बात हम करते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जहां आज का दिन शानदार रहा एथलेटिक्स के लिए। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने आज 3 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की F64 भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल, T63 ऊंची कूद में थंगावेलु मरियप्पन ने और महिलाओं की F51 क्लब थ्रो में एकता भयान ने पहला स्थान हासिल किया। सुमित ने भाला फेंक को 69.50 मीटर की दूरी तक फेंका। भारत के ही संदीप ने इसी स्पर्धा में 60.41 मीटर तक भाला फेंक कांस्य पदक अपने नाम किया। मरियप्पन ने 1.88 मीटर के चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ ऊंची कूद में स्वर्ण पदक हासिल किया। एकता ने क्लब थ्रो में 20.12 के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सोने का तमगा जीता। इसी स्पर्धा में भारत की कशिश लाकड़ा ने 14.56 मीटर के थ्रो से रजत पदक अपने नाम किया। अनवर जी, टोक्यो पैरा ओलंपिक और 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित ने आज एक बार फिर कमाल करके दिखाया।
जी बिल्कुल, और कैटेगरी देखिए F64 F64, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि F64 कैटेगरी जो पैरा एथलीट्स की होती है उनके या तो नी के नीचे यानी घुटने के नीचे के जो पैर होते हैं वो प्रभावित होते हैं या होते ही नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में किस प्रकार से वो भाला फेंक करके और लगातार अगर देखा जाए निरंतरता के साथ स्वर्ण पदक जीत रहे हैं तो कितनी बड़ी चुनौती का सामना है। हम अक्षम कहते हैं इन्हें, लेकिन कई सक्षम खिलाड़ियों को इन्होंने जो एक सबक दिया है वो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और खास करके इन्होंने जिस निरंतरता के साथ प्रदर्शन किया, आप देखें 2023 का और फिर उसके बाद आने वाला जो पेरिस ओलंपिक के बाद जो फिर पैरालंपिक्स होंगे उसके लिए क्वालिफिकेशन और फिर लगातार जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, बल्कि उन्होंने अपनी जो दूरी है उसको और ज्यादा बढ़ाया ही है पहले के मुकाबले में, तो लगातार अपने प्रदर्शन को निखार रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब पैरा एथलीट्स के बारे में हम बात करते हैं और स्पोर्ट्स स्कैन में जब उनकी पहली खबर बनती है, ये और भी अच्छी बात है। क्योंकि हम शुरू से ये कहते रहे कि उनकी शिकायत रही है कि जो मेन स्ट्रीम के एथलीट हैं उनके बारे में तो बहुत बात होती है, पैरा एथलीट्स की बात नहीं होती।
एथलीट्स एथलीट्स है, खिलाड़ी पूरे अपना दम लगा देता है
क्योंकि इनके शारीरिक चुनौतियां हैं। कुछ खिलाड़ी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, और वैसी परिस्थिति में अगर वो भी F64 कैटेगरी में अगर कोई स्वर्ण दे रहा है आपको, उसकी कैटेगरी बड़ी खतरनाक होती है जिसे देखा जाए, यानी पैर का निचला हिस्सा या एड़ी से लेकर अगर देखा जाए ठेवने से वहां तक की परिस्थिति बहुत खराब होती है और उसी में उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है थ्रो के लिए।
और ऐसे ही देखिए मरियप्पन ने भी टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीत चुके और आज स्वर्ण पदक जीता ऊंची कूद में,
और बहुत अच्छी ये शुरुआत हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेरिस में जो मेन ओलंपिक के बाद जो इनका ओलंपिक होगा उसमें निश्चित रूप से ये जो खिलाड़ी हमारे एथलीट हैं पहले से भी ज्यादा पदक लेकर आएंगे।
भारतीय कुश्ती महासंघ ने ओलंपिक कोटा विजेता सभी 6 पहलवानों को चयन ट्रायल से छूट देने का फैसला किया है, लेकिन उनके फॉर्म और फिटनेस का आकलन आगामी रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट और हंगरी में अभ्यास शिविर में होगा। महासंघ ने कहा है कि ये विशेष परिस्थितियों में लिया गया फैसला है और इसे भविष्य के लिए परिपाटी नहीं माना जाना चाहिए। अगर किसी भी पहलवान की फिटनेस में कमी पाई गई तो महासंघ 8 जुलाई से पहले ट्रायल के जरिए विकल्प के बारे में विचार करेगा और प्रविष्टियां भेजने की आखिरी तारीख 8 जुलाई है। हमने अनवर जी देखा है कि पिछले कुछ समय से कुश्ती में काफी उतार चढ़ाव रहा है और अब अचानक ये फैसला, क्योंकि एक तरफ निशानेबाजी की ट्रायल्स चल रहे हैं और कुश्ती में ये फैसला आया।
देखिए, अगर संघ ने, संबंधित संघ ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है पहलवानों के लिए कि ये परिपाटी नहीं बनेगी, ये अभी लिया गया फैसला है। लेकिन दो बातें यहां पर ध्यान रखने लायक जरूर है, एक फिटनेस जो सबसे ज्यादा मसला होता है इसमें, और दूसरे इनकी रैंकिंग क्या होती है, इस पर नजर रहेगी फेडरेशन की और इसी आधार पर जो चयनित किए जाएंगे वो। और उसमें भी देखा जाए तो अगर नाम पर हम नजर डालते हैं तो ज्यादातर उसमें महिला है और तो उन पर सारा दारोमदार है इस बार। और रैंकिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो पिछला प्रदर्शन और आने वाला प्रदर्शन जो ओलंपिक से पहले है उसी आधार पर फैसला होगा। लेकिन सबसे ज्यादा उनको अगर तवज्जो किसी चीज पर देनी होगी तो वो अपनी फिटनेस पर।
बिल्कुल, और आपको बता दें कि भारत ने पहले से ओलंपिक के लिए 6 कोटा हासिल किए हैं कुश्ती में, जिनमें अमन सहरावत अकेले पुरुष पहलवान हैं और महिला वर्ग में विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, निशा दहिया और ऋतिका हुड्डा ने क्वालिफाई किया है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 12वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं और इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अनवर जी, आज मैच जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी, तो फाइनल की एक टीम आज तय हो जाएगी और केकेआर का जो एक दबदबा वो शुरू से ही रहा है इस बार, लेकिन जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने के बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगाया और अब ये जो परिस्थिति देख रहे हैं 12वें ओवर में 5 विकेट, ट्रेविस हेड शून्य पर आउट, तो क्या देख रहे हैं?
जी हाँ बिल्कुल, और मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से तबाही मचाई है तो कम से कम केकेआर के हैदराबाद के खेमे में ऐसी तबाही देखने को मिली नहीं थी, वो भी अगर पावर प्ले में जिस तरह की बल्लेबाजी की है शुरू में, और उनको अपने बल्लेबाजों पर काफी नाश था और यही कारण है कि टॉस जीतने के बाद खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बड़े बड़े स्कोर्स उन्होंने पूरे आईपीएल में प्ले ऑफ से पहले पूरे हैं, लेकिन आज कहा जाता है ना कि क्रिकेट या किसी खेल में हर दिन नया होता है, तो आज बिल्कुल नया दिन था, गेंदबाजों का दिन अभी तक अगर देखा जाए, हालांकि देखा जाए कि हैदराबाद ने कुछ अपने आप को संभाल जरूर लिया है और रन रेट को कम होने नहीं दिया है, कम से कम रन लगातार बनते रहे हैं। हेनरी क्लासन ने काफी अच्छे स्ट्रोक्स लगाए और फिर अगर देखा जाए, लेकिन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी थ्रू आउट इस आईपीएल में की है तो उस तरह का चमत्कार आज देखने को मिला नहीं।
और आपको बता दें कि आज हारने वाली टीम को एक और मौका जरूर मिलेगा, कल एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा, दूसरा क्वालिफायर शुक्रवार को होगा जिसमें आज हारने वाली टीम और कल एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम के बीच मैच होगा, फाइनल रविवार को खेला जाएगा। अनवर जी, एक और जहां लीग ग्रुप के आखिरी मैचों में राजस्थान के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई तो दूसरी ओर बेंगलुरु ने अपने आखिरी मैचों में कमाल का प्रदर्शन करके प्लेऑफ में जगह।
देखिए, बेंगलुरु ने जिस तरह का प्रदर्शन 5-6 मैचों में किया है और जिस तरह से उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि उन्हें फाइनल में होना चाहिए, वो उनके हकदार है, लेकिन उन्हें उसके लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा अच्छा मैदान में, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन काबिले तारीफ है उनका प्रदर्शन, उनके खिलाड़ी ने जो जज्बा दिखाया है कि किस तरह से शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि टीम ऊपर उठेगी नहीं, लेकिन टीम ने शानदार तरीके से वापसी की और प्लेऑफ में जगह बनाई, तो काफी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और ये आईपीएल 2024 तो कई मानों में याद रखा जाएगा, छक्कों के लिए, चौकों के लिए और जिस तरह के रन चेस हुए हैं बड़े बड़े उसके लिए भी याद रखा जाएगा, तो बल्लेबाजी के लिए ये आईपीएल 2024 है। लेकिन आज यहां पर
खेल देखने को मिला,
यहां पर अभी तक जो खेल हुआ है उसमें तो भाई गेंदबाज हावी है।
जी, अब बैडमिंटन कोर्ट का रुख करते हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी ने पिछले सप्ताह थाईलैंड ओपन खिताब जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इस टूर्नामेंट से पहले सात्विक और चिराग की जोड़ी तीसरे स्थान पर थी। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता जोड़ी चिराग और सात्विक साईराज ने थाईलैंड ओपन में चीन के चेन बो यांग और लियू यी को हराया था। उनके पास दो थाईलैंड ओपन खिताब है जिन्होंने 2019 में अपना पहला खिताब जीता था। थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली तनिषा क्रिस्ट और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी भी दो स्थान ऊपर चढ़कर 19वें नंबर पर पहुंच गई है। देखा जाए तो भारत की शीर्ष ये डबल्स जोड़ी है, पेरिस के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा प्रदर्शन लाजमी है उनसे।
बिल्कुल, और जब आप रैंकिंग में भी आपको अच्छा स्थान मिल जाता है तो काफी मनोवैज्ञानिक लाभ इसका मिलता है। और अजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्वालिफिकेशन राउंड भी पूरा हो चुका है, अब नए हौसले के साथ, नए उमंग के साथ मुकाबले में उतरेंगे और इनसे तो काफी उम्मीदें हैं ही भारत को।
और उधर आपको बता दें कि जो मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है, उसमें भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद तथा ऋतिका और सिमरन की जोड़ियां दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके अलावा राष्ट्र पुरुष सिंगल्स में कल पहले दौर में किरण जॉर्ज का मुकाबला जापान के ताकुमा ओबायाशी से होगा और कल ही पीवी सिंधु का भी मुकाबला होगा। इसके अलावा आकर्षि कश्यप भी चुनौती पेश करेंगी। अब चलते हैं हॉकी के मैदान में। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम का एफआईएच प्रो लीग यूरोपीय चरण कल से शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम कल अपने पहले मैच में अर्जेंटीना से मुकाबला करेगी, वहीं महिला टीम का भी पहला मैच अर्जेंटीना से है। भारतीय पुरुष टीम इस चरण में ओलंपिक से पहले अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी नई कप्तान सलीमा टेटी की अगुवाई में पेरिस खेलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने की निराशा से उभरने का प्रयास करेगी। भारतीय टीमें बेल्जियम, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी मैच खेलेंगी। एक पुरुष टीम के लिए तो क्वालिफाई पेरिस ओलंपिक्स के लिए एक तरह से तैयारी का एक मौका,
बड़ी टीमों के साथ खेलने का एक मौका मिल रहा है, तो इसका, जैसा कि आपने कहा कि इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए खिलाड़ियों को। और एक और लाभ मिल सकता है, एक और मौका मिला है पुरुष टीम को कि 2026 की जो विश्व प्रतियोगिता होगी हॉकी की, उसमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए अगर इसमें अच्छा प्रदर्शन भारतीय हॉकी टीम करती है तो फिर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा विश्व हॉकी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो दो ऐसे अवसर हैं जिसका फायदा उठाना चाहिए भारतीय टीम को, और कहा भी है टीम के कप्तान ने, पहले तो ये कि हम अच्छे से तैयारी करें इन बड़ी टीमों के खिलाफ खेल करके ओलंपिक के, और उसके बाद 2026 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल करें।
महिला टीम की अगर बात करें, क्योंकि इस बार कप्तान बदल गई हैं, पुनिया की जगह सलीमा टेटे ने ली है, तो उनके ऊपर भी काफी प्रेशर रहेगा।
जी हाँ, प्रेशर रहेगा, और जिस जो निराशा हाथ लगी है कि हम जो टिकट नहीं मिला पेरिस ओलंपिक का, उसे उबरने की कोशिश की जाए। लेकिन हाल के दिनों में अगर इस निराशा को अगर छोड़ दें तो भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है बड़े मुकाबलों के लिए, और जो बायलेटरल सीरीज होती है, जो विदेशी दौरे पर भारतीय महिला टीम गई थी हॉकी की, उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।
उधर यूरोप दौरे पर गई भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज पहले मैच में बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर शानदार शुरुआत की। भारत की ओर से निर्धारित समय में उपकप्तान शारदानंद तिवारी ने 2 गोल किए। दोनों टीमों के निर्धारित समय में 2-2 गोल रहने पर फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। शूटआउट में गुरजोत सिंह, सौरभ आनंद, कुशवाहा, दिलराज सिंह और मनमीत सिंह ने गोल किए। भारत का अगला मैच कल नीदरलैंड्स के ब्रेडा में बेल्जियम से होगा। उपकप्तान ने अनवरजी पहले 2 क्वार्टर में भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन तीसरे और चौथे में बेल्जियम हावी हो गई।
शारदानंद ने जिस प्रकार से हासिल किया पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, वो काफी दिलचस्प था देखने लायक, क्योंकि अगर आप गेंद आगे लेकर बढ़ते हैं और रक्षा पंक्ति अगर सही तरीके से आपके से पेश नहीं आती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने हासिल किया है और उसको न केवल हासिल किया, उसे गोल में परिवर्तित भी किया। एक अच्छा मुकाबला था निश्चित रूप से, और जीत के साथ ये जूनियर टीम की शुरुआत हुई है। उम्मीद करते हैं कि यही टीम के कुछ खिलाड़ी जो पेरिस के बाद जो अगला ओलंपिक होगा उसमें भारतीय हॉकी टीम के चेहरे में होंगे सीनियर टीम में, तो क्रिकेट की तरह ही हॉकी इंडिया ने इस बात का प्रयास किया कि कम से कम 3 लेयर की टीमें हॉकी में भी रहें, उसी की ये कोशिश है। सब जूनियर लेवल के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले कराने की तैयारी है।
जाते जाते बात तीरंदाजी की। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का दूसरा चरण कल से दक्षिण कोरिया के येचुआन में शुरू हो रहा है। इसमें पिछले महीने चीन के शंघाई में पहले चरण में हिस्सा ले चुकी वही 16 सदस्यीय भारतीय टीम है। भारतीय दल पहले चरण में 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदकों के साथ चैंपियन टीम के रूप में उभरा था। यह तीरंदाजी विश्व कप के किसी एक संस्करण में भारत की सर्वोत्तम पदक तालिका थी। अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। अनवर जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।